किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। कहानियां जिस समय लिखी जाती हैं, वो उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। जैसे आजकल के दौर में हमारे देश में बोर्ड एग्जाम्स बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप के होते हैं। इसी पर आधारित है एक कहानी जो हमें अपने रोजमर्रा के जीवन के बारे में थोड़ा गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी द्वारा लिखी ये कहानी ऑल द बेस्ट। वाचन है मेरा यानी निधि बासु का। सुबह के 7:30 बज रहे थे। रेडियो पर संगीत सरिता कार्यक्रम की धुन बज रही थी। एफएम के न जाने कितने चैनल हो गए थे, फिर भी राधे बाबू को यही चैनल पसंद आता था। उनके पसंदीदा गाने जो बजते थे इस पे। बंगले का दरवाजा खुला और निक्की बेबी बाहर निकली एकदम तैयार स्कूल की यूनिफॉर्म में। राधे बाबू चौंके, इतनी सुबह? जो बाहर देखा तो मोहन भी गाड़ी लगा चुका था। याद आया राधे बाबू को, अरे हाँ, आज से तो 12वीं की परीक्षा शुरू है। निक्की बेबी धड़धड़ाती हुई बाहर निकल रही थी। गुड मॉर्निंग बेबी, राधे बाबू ने कहा। निक्की बेबी ने शायद सुना नहीं, या फिर सुना तो अनसुना कर दिया। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि वो तनाव में है। फिर भी राधे बाबू ने उसे शुभकामनाएं देना अपना कर्तव्य समझा। आज से पर्चे शुरू है ना बेबी, ऑल द बेस्ट, राधे बाबू ने अपनी शुभकामनाएं दे दी।
थैंक यू गार्ड भैया, निक्की बेबी ने इस बार अनमने ही सही जवाब दिया और चिल्ला कर बोली,
मम्मा कम ऑन, आई एम गेटिंग लेट।
लेट कैसे हो सकती है, पर्चा तो 9 बजे से है, राधे बाबू ने मन ही मन सोचा। फिर उन्होंने खुद को झिड़की दी, अरे ठीक ही तो है, बोर्ड परीक्षा में एग्जाम सेंटर जो बदल जाता है, जल्दी जाना ही ठीक है। तभी अंदर से बदहवास सी मैडम भी बाहर निकली, शायद जल्दबाजी में ठीक से तैयार नहीं हो पाई थी। अपने हाथों से बालों को संवारते और अपनी ड्रेस ठीक करते उन्होंने दरवाजा खींचा और गाड़ी की तरफ बढ़ी। गुड मॉर्निंग मैडम, राधे बाबू ने मैडम का अभिवादन किया।
गुड मॉर्निंग,
मैडम ने राधे बाबू की तरफ देखे बगैर जवाब दिया और गाड़ी में बैठ गए।
मोहन कितनी बार कहा है तुमसे कार का एसी चालू रखा करो ताकि कार थोड़ी ठंडी हो जाए, अब चलो जल्दी।
मैडम ने मोहन को फटकार लगाई और कार बंगले के गेट के बाहर हो गई।
मैडम भी तनाव में है
और होंगी ही, राधे बाबू ने मन ही मन सोचा। पिछले 1.5 महीने से निक्की बेबी की परीक्षा के लिए छुट्टी लेकर बैठी हैं। रोज सुबह शाम निक्की बेबी को क्लास के लिए लेने छोड़ने भी जा रही हैं। उनकी इस सारी मेहनत की सही परीक्षा तो आज से ही शुरू होनी थी। एक दिन तो मैडम साहब पर ही चिल्ला उठी थी,
बस मैं ही खट रही हूँ बेटी के लिए, तुम्हें कोई फिक्र है,
साहब ने झल्ला कर उत्तर दिया था। अब क्या हुआ, तुम्हारी तरह से मैं भी छुट्टी लेकर बैठ जाऊं? मालूम तो है तुम्हें चाइल्ड केयर लीव सिर्फ महिलाओं को है।
अरे चाइल्ड केयर लीव ना सही, 2-4 दिन यूं ही छुट्टी लेकर तो बैठ सकते हैं ना आप। पता नहीं ऐसा कौन सा काम है आपका जो 2-4 दिन बेटी के लिए छुट्टी नहीं ले सकते। मैं भी तो अपना जरूरी काम छोड़कर घर पर बैठी हूँ, जानते भी हैं आप ये निक्की कभी कभी इतनी टेंस हो जाती है कि मेरे संभाले नहीं संभलती।
सही कह रही थी मैडम, निक्की बेबी इन दिनों कुछ ज्यादा ही तनाव में रहती थी, पढ़ाई परीक्षा का बोझ दोनों जो थे।
परीक्षा के बोझ से याद आया राधे बाबू को कि परीक्षा तो आज से सुमी की भी शुरू हो रही थी। सुमी यानी राधे बाबू की दूसरे नंबर की बिटिया, वो भी 12वीं का ही इम्तिहान दे रही है, वो भी तो गई होगी पर्चा देने। राधे बाबू ने परसों मैडम से अनुरोध भी किया था सुबह 1 घंटा जल्दी छोड़ देने का।
मुझे एतराज नहीं, लेकिन तुम अपने ठेकेदार से पूछ लो। दिन वाला गार्ड यदि जल्दी आ जाए तो तुम चले जाना। कम से कम गेट खोलने बंद करने के लिए कोई तो हो, और किसी काम के तो हो नहीं तुम लोग। मैडम ने जवाब दिया था और अंदर चली गई थी। उनके इस जवाब का मतलब ना ही था। ठेकेदार से पूछने का मतलब था दो चार गालियां खाना और अपने एक दो दिन की तनख्वाह कटवा लेना। दिन ड्यूटी वाले जगदीश की माँ अस्पताल में थी। बेचारा रात भर अस्पताल में रहकर बड़ी मुश्किल से 8 बजे ड्यूटी पर पहुंच पाता था। उससे कुछ कहना बेकार था, लिहाजा राधे बाबू को यहीं रुकना पड़ रहा था 8 बजे तक। मन ही मन उन्होंने सुमी बिटिया को ऑल द बेस्ट कह दिया। शांत रहकर पढ़ाई करती है सुमी बिटिया, कोई शोर नहीं, कोई तनाव नहीं। कई दिनों से तो उसके पास ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे राधे बाबू। बस एक बार शायद दिवाली के समय कहा था उससे, बिटिया अच्छे नंबर लाने की कोशिश करना, नहीं तो किसी अच्छे सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तू तो जानती है ना, प्राइवेट कॉलेज की फीस देने लायक पैसा नहीं है हमारे पास। उस दिन से लगता था सुमी बिटिया ने इस बात को गांठ में बांध लिया था। 2 कमरों के मकान में सारे शोर शराबे के बीच सुमी एक कोने में बैठ चुपचाप अपनी पढ़ाई करती रहती थी। राधे बाबू से उसकी मुलाकात कम ही हो पाती है। बंगले की नाइट गार्ड की ड्यूटी खत्म करके राधे बाबू को सुबह घर पहुंचते पहुंचते 9 बज जाते हैं। फिर 1 घंटे बाद 10 बजे से शाम 6 बजे तक आर्केड कंसल्टेंट में ड्यूटी करते हैं। उसका दफ्तर घर के पास ही है, फिर भी वापस लौटते शाम के 7 तो बज ही जाते हैं। शाम को सुमी ने एक ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर रखी थी। कोई भले मानुष अध्यापक थे जो बहुत कम पैसों में बच्चों को फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहे थे। 30-40 बच्चों की क्लास थी। राधे बाबू ने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन उन्हें लगता था कि वे सचमुच कोई देवदूत होंगे, वरना आज के जमाने में 600-700 रुपए में फिजिक्स और मैथ्स कौन पढ़ाएगा। सुमी वहीं जाती थी 2 घंटे, और किसी कोचिंग क्लास में भेजने की तो हिम्मत थी ही नहीं राधे बाबू की। कोचिंग और ट्यूशन के दाम तो 7वें आसमान पर थे। निक्की बेबी जिस क्लास में जाती है, सुना है वहां फीस घंटे के हिसाब से है। कॉलेज एडमिशन का हाल तो और भी बुरा है। कभी कभी अखबार में कॉलेज के एडमिशन के बारे में समस्या पढ़कर तो राधे बाबू का दिमाग चकरा जाता था। 92-94% वाले बच्चों को भी एडमिशन नहीं मिल पा रहा है अच्छे कॉलेज में। क्या करेंगे यदि सुमी अच्छे नंबर नहीं ला पाई तो? ऐसा नहीं था कि ये चिंता सिर्फ राधे बाबू को ही थी, साहब मैडम भी इसी चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन साहब यही बोलते तो बाहर निकले थे, निक्की ठीक से नहीं पढ़ेगी तो ऑस्ट्रेलिया भेजना पड़ेगा ग्रेजुएशन के लिए। कम से कम ये तो कह पाऊंगा कि बेटी विदेश में पढ़ रही है। मैडम ने उस पर जवाब भी दिया था, हाँ दिल्ली के किसी सेकेंड ग्रेड कॉलेज में पढ़ाने से तो अच्छा ही है कि बेटी ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में पढ़े। फ्रांस में पढ़ेगी ना तो 40-50 लाख रुपए साल से कम का खर्चा नहीं होगा। साहब ने हिसाब लगाया, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, एक ही तो बेटी है हमारी, मैडम ने कहा था, और चर्चा यहीं समाप्त हो गई थी। साहब लोग ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की सोच सकते थे, राधे बाबू के लिए तो दिल्ली के ही कॉलेज थे। यही सब सोचते सोचते 8 बज गए। जगदीश भी आ चुका था। राधे बाबू ने झटपट यूनिफॉर्म उतारी, दूसरे कपड़े पहने और घर जाने लगे। जाते जाते वे जगदीश की माँ का हाल पूछना ना भूले। हाँ अभी ठीक है, मुला डॉक्टर कहते हैं हफ्ता भर और रखना पड़ेगा। कहा करूं दादा, मजबूरी है, नहीं तो मैं निश्चित जल्दी आ जाता, जगदीश ने उत्तर दिया। नहीं नहीं, मैंने उसके लिए नहीं पूछा भैया, हमारी सुमी बिटिया बड़ी समझदार है, मेरी मजबूरी समझ लेगी, राधे बाबू ने कहा और घर की राह ली। घर पहुंचने में ही 9 बज गए थे। नहा धोकर तैयार हुए तो ललिता ने टिफिन बनाकर रख दिया। सुमी ठीक से चली गई ना, राधे बाबू ने पूछा। हाँ अच्छे से गई है, पड़ोस के सुरेश भैया चले गए थे साथ।
उनका भी बेटा है ना 12वीं में, उसका भी सेंटर वहीं था। दोनों को अपने स्कूटर पर बैठा कर ले गए, ललिता ने कहा। फिर कुछ देर रुकी। राधे बाबू को लगा और कुछ कहना चाहती है ललिता।
क्या बोल रही थी, बोलो ना।
मैं कह रही थी कि यदि संभव हो तो बिटिया को लेने चले जाते, बेचारी 12 बजे की धूप में अकेली आएगी, ललिता ने कहा।
राधे बाबू के लिए ये बड़ा धर्म संकट था।
सुबह छोड़ने जाने के लिए तो वो तैयार थे, कोशिश भी की थी, लेकिन दोपहर के बारे में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था।
मैं तो इसलिए कह रही थी कि परीक्षा का सेंटर तो दूसरी जगह है ना, नई जगह है, वहां से बिटिया कैसे आएगी।
ललिता की चिंता वाजिब थी, लेकिन आज आर्केड कंसल्टेंट में बोर्ड मीटिंग थी। खन्ना साहब ने कल ही सबको हिदायत दी थी,
सबको समय पर पहुंचना है, यूनिफॉर्म भी साफ सुथरी होनी चाहिए, और राधे श्याम चाय पानी खाने का सारा इंतजाम तुम्हें ही देखना है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए।
ऐसे में आज के दिन तो दफ्तर से निकलना नामुमकिन था। आज खन्ना साहब से पूछने का मतलब था नौकरी से हाथ धोना। वैसे भी खन्ना साहब का खास विश्वास था राधे बाबू पर। राधे बाबू को सोच में पड़ता देख ललिता तुरंत बोली,
रहने दो, मैं सुरेश भैया से ही कह दूंगी, वो ले आएंगे सुमी को।
नहीं नहीं, ऐसा करो तुम चली जाओ, और आते समय बस से मत आना, रिक्शा कर लेना,
राधे बाबू ने कहा, और जेब से 200 रुपए निकालकर ललिता को देने लगे।
रिक्शा क्यों करेंगे, काम का 150-200 रुपए लग जाएंगे।
नहीं, बिटिया परीक्षा देकर थकी हारी लौटेगी, रिक्शे से ही आना,
राधे बाबू ने कहा, और झटपट तैयार होकर दफ्तर की ओर निकल गए। शाम को जब राधे बाबू घर लौटे तो 7 बज चुके थे। बोर्ड मीटिंग के बाद सारी चीजें समेटने में समय लग गया था।
शुक्र है कि मीटिंग अच्छी हुई और खन्ना साहब ने सबको बधाई दी। सबके सामने उन्होंने कहा, भाई राधे श्याम, वेल डन, तुम्हारा इंतजाम अच्छा रहा।
खन्ना साहब की ये बात बहुत मजेदार थी। खुश होते हैं तो तारीफों के पुल बांध देते हैं, और नाराज होते हैं
तो माँ बहन सबकी गालियां दे डालते हैं।
सुमी बिटिया के कॉलेज एडमिशन में कोई दिक्कत होगी तो राधे बाबू के लिए खन्ना साहब ही आसरा हैं। लौटे तो ललिता और छोटी बेटी रिमी घर पर थे, सुमी ट्यूशन क्लास जा चुकी थी।
बड़ा बेटा तो घर में टिकता ही नहीं है,
ना उसे घर से मतलब था, ना माँ बाप से। कब आता कब जाता इसका कोई पता राधे बाबू को नहीं होता था। शुरू शुरू में पूछते थे राधे बाबू, अब तो उन्होंने उसके बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। 10वीं में फेल हुआ था, तब आखिरी बार बात की थी शायद उससे, अब उस बात को भी 5 साल हो चुके थे।
सुमी का पर्चा ठीक हुआ,
खाना खाते खाते राधे बाबू ने पूछा।
हाँ अच्छा हुआ, बहुत खुश थी, अब अगला वाला ठीक हो जाए तो बड़ा बोझ उतरेगा।
अगला पर्चा कब है,
राधे बाबू को पूछते शर्म भी आ रही थी। उन्हें अपनी बिटिया की परीक्षा का टाइम टेबल तक पता ना था।
अगला पर्चा 5 तारीख को है, यानी 3 दिन बाद।
उस दिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बिटिया को छोड़ने जाऊं,
राधे बाबू ने कहा जरूर, लेकिन उन्हें मालूम था कि वे झूठ बोल रहे हैं।
मैडम का रुख साफ था,
ठेकेदार से कहो। इन दिनों वैसे भी मैडम का रुख राधे बाबू की तरफ से रूखा ही हो गया था, इसलिए बार बार जताती भी थीं।
वैसे भी तो तुम लोग किसी और काम के तो हो नहीं, बस गेट खोलने और बंद करने के काम आते हो।
ये बात एकदम नहीं उठी थी। गार्ड की ड्यूटी में जो होता है वो सब काम राधे बाबू ईमानदारी से किया करते थे।
फिर एक दिन मैडम ने कहा कि पूजा के लिए फूल ले आया करो,
फिर कभी मदर डेयरी से दूध तो कभी पास की दुकान से थोड़ा सामान लाने मैडम भेज दिया करती थी।
राधे बाबू ने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन उस दिन राधे बाबू हां नहीं कर सके।
हुआ यूं कि बंगले के अंदर काम करने वाला हरि छुट्टी गया हुआ था, और सुबह सुबह साहब जूतों की खराब हालत देखकर नाराज हो गए थे। साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैडम ने चुपचाप जूते लाकर राधे बाबू को देते हुए कहा, राधे जरा इस पर पॉलिश कर देना। दिल मिला उठे थे राधे बाबू। मैडम ये हमसे ना होगा, ये गार्ड की ड्यूटी में शामिल नहीं है। तुम लोगों के दिमाग चढ़ गए हैं, सीधे काम के लिए मना कर रहे हो। ठीक है देख लूंगी, मैडम ने कहा था और जिस तेजी के साथ आई थी उसी तेजी से वापस भी चली गई थी। उसके बाद जूते की पॉलिश का क्या हुआ ये राधे बाबू को मालूम नहीं। उन्हें अंदेशा था कि मैडम ठेकेदार से शिकायत करके उनकी ड्यूटी बदलवा देंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ उस दिन से मैडम जरूर कुछ खिंची खिंची सी रहने लगी। अब उन्होंने राधे बाबू को राधे की जगह गार्ड कहकर पुकारना शुरू कर दिया। राधे बाबू के बाजार से सामान लाने का काम भी अब जगदीश से या किसी और से कहने लगी थी। इसलिए तो जब उन्होंने बिटिया की परीक्षा के लिए जल्दी जाने की बात कही थी तो उन्होंने ताना मारा था, वैसे भी तो तुम लोग कुछ काम करते नहीं हो। राधे बाबू बंगले पहुंचे तो जगदीश आतुरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। वो यूनिफॉर्म उतार कर दूसरे कपड़े पहन चुका था। कैसा हुआ बिटिया का पेपर? अच्छा हुआ, ऐसा ललिता बता रही थी। बिटिया से तो मुलाकात ही नहीं हो पाई आज दिन भर में। दादा इधर तो अंदर घमासान युद्ध मचा है, निक्की बेबी का पेपर बिगड़ गया है। दिन भर से धमा चौकड़ी मची है, कभी माँ चिल्लाती है तो कभी बेटी, हलकान कर डाला है माँ बेटी ने। साहेब आएंगे तो और बड़ा तमाशा होगा, आप मजा लेना उस तमाशे के, जगदीश ने दिन भर के हालात का विवरण पेश करते हुए कहा। उसे जरा प्रोत्साहन मिलता तो शायद और ज्यादा चटखारे लेकर बताता, लेकिन राधे बाबू ने ही उसे रोक दिया। अरे हो गया होगा कुछ भी, हमें उससे क्या, घर का अंदरूनी मामला है, वो लोग निपट लेंगे, हमें तो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ड्यूटी से शायद जगदीश को भी याद आ गया कि उसे अस्पताल पहुंचना है। राधे बाबू से विदा लेकर जगदीश चलता बना और वे केबिन में आकर अपनी यूनिफॉर्म बदलने लगे। अगले दो दिन काम की भागादौड़ी में ही बीत गए। साहब और मैडम में निक्की बेबी को लेकर जमकर झगड़ा भी हुआ। साहब ने तो यहां तक कह दिया मैडम से, अगर बेटी संभालनी नहीं आती तो उसे पैदा ही क्यों किया। इस बात पर मैडम ने भी साहब को बुरा भला कह दिया, बेटी को पैदा करना ही सब कुछ नहीं होता, उसके पास बैठकर उसकी बातों को सुनना भी बाप का फर्ज होता है। लेकिन बाप को तो इधर उधर मुंह मारने से फुर्सत कहां है। बंगले की दीवारें इतनी मोटी भी नहीं थी कि ये सारी आवाजें बाहर ना आ सके। राधे बाबू सब कुछ सुनते और मुस्कुरा कर रह जाते। बच्चों की परीक्षा माँ बाप में कैसा तनाव पैदा कर देती है, यही सोचकर वे आश्चर्य में पड़ जाते। हाँ पर इसी बीच सुमी बिटिया के पास बैठकर उससे बतियाने की फुर्सत उन्होंने जरूर निकाल ली थी। उससे अपनी मजबूरी भी बताई थी कि क्यों वे उसे परीक्षा के दिन छोड़ने नहीं आ सके। सुमी बिटिया भी बड़ी समझदार थी, उसने अपने बाबा की मजबूरी को समझा और ये भी कह दिया कि आगे भी ना आ पाए तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उसने राधे बाबू को आश्वस्त कर दिया कि अब वो एग्जाम सेंटर का रास्ता जान चुकी है और अकेली भी आना जाना कर सकती है। फिर भी राधे बाबू ने तय किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वे अगले पेपर यानी 5 तारीख को बिटिया को छोड़ने जाएंगे। लेकिन सोचा हुआ सब कुछ हो ही जाए, ऐसा कहां होता है। राधे बाबू की जिंदगी में तो शायद नहीं ही होता। सोचा सब कुछ होना होता तो बेटा ही ठीक से पढ़ लिख नहीं जाता। सुमी के बाद लाख चाहने पर भी आने वाली बिटिया को आने से भी तो रोक नहीं पाए थे राधे बाबू। 4 तारीख की सुबह जगदीश की मां स्वर्ग से धार गईं। जगदीश का अब कुछ दिन छुट्टी पर आना संभव नहीं था। ठेकेदार ने राधे बाबू को दिन रात दोनों ड्यूटी करने को कहा था, लेकिन राधे बाबू की दिन की नौकरी की वजह से ठेकेदार को मजबूरन रवि को भेजना पड़ा। रवि वैसे ही दिन में पढ़ाई करता था इसलिए बामुश्किल ड्यूटी एडजस्ट कर पा रहा था। उसने राधे बाबू को फोन पर ही कह दिया था, चाचा थोड़ी देर हो जाएगी आने में, संभाल लेना। अपनी दिन और रात की ड्यूटियों में इतने उलझ गए थे राधे बाबू कि जगदीश की माँ की काठी में भी नहीं जा पाए थे। 5 तारीख की सुबह संगीत सरिता खत्म होने आया तब भी उन्हें निक्की बेबी के आने की आहट सुनाई नहीं दी। मोहन न जाने कितनी देर से गाड़ी चालू किए बैठा था। वे हैरत में थे कि बेबी आज लेट कैसे हो गई। एक बार मन हुआ कि दरवाजे की घंटी बजाकर ताकीद कर दें, लेकिन संकोच में रह गए। तभी दरवाजा खुला और माँ बेटी बाहर निकली। राधे बाबू ने आदतन गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन दोनों में से किसी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। निक्की बेबी जब कार में बैठी तो राधे बाबू उसे शुभकामनाएं देने आगे बढ़े, तभी उन्हें मैडम की आवाज सुनाई दी। डोंट लुक एट हिम निकी, अदरवाइज यू विल स्पॉइल टुडेज पेपर आल्सो।
यस मामा, ही इज अनलकी फॉर मी।
चलो मोहन, मैडम ने कहा और कार बंगले के बाहर निकल गई। 12वीं तक ही पढ़े थे राधे बाबू, वो भी हिंदी मीडियम से, लेकिन दुनिया ने इतनी अंग्रेजी तो उन्हें सिखा ही दी थी कि वे माँ बेटी द्वारा कहे गए इन वाक्यों का अर्थ समझ सकें। फिर भी वे एक बाप थे, मन ही मन बुदबुदाए, ऑल दी बेस्ट बेबी, आज का पेपर अच्छे से करना। उन्हें यकीन था कि आज निक्की बेबी का पेपर जरूर अच्छा होगा और शायद सुमी बिटिया का भी। आप सुन रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी द्वारा लिखी कहानी ऑल द बेस्ट। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।